नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में 4 विकेट से हराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप दिव्यांगता खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर विशेष ओलंपिक विश्व खेलों 2027 के लिए क्वालिफाई किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एक रिपोर्ट।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन में खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देते हुए इंग्लैंड की सरजमी पर इतिहास रच दिया है। जीत के लिए मिले 259 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 48 ओवर 2 गेंद में हासिल कर लिया। यह इंग्लैंड की धरती पर भारतीय महिला टीम का सबसे सफल रन चेस रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 258 रन बनाए। मेजबान के लिए सोफिया डंकले ने सर्वाधिक 83 रन बनाए। स्नेह राणा और क्रांति गौड़ ने 2-2 जबकि अमनजोत कौर और श्री चरणी ने भारत को 1-1 सफलता दिलाई। इसके जवाब में भारत ने दीप्ति शर्मा के 62 रन और रोड्रिगेज ने 48 रन की पारी की बदौलत 10 गेंद शेष रहते ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से चार्ली डीन ने 2 विकेट अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। भारत की नजर इस मैच को जीतकर श्रृंखला पर कब्जा करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप शुरू होने में 2 महीने का समय बचा है और उसके पहले भारतीय टीम की ये लय कितना शुभ संकेत है।
बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं और ये कॉन्फिडेंस की बात है। देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल कर रहे थे और खासकर उनकी धरती पर जा करके, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है। आपके शुरुआत की सीरीज जब आपने जीते, जो 2 मैचेस बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिवली आपने जब जीते, ये उसका कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा है। और इतना बड़ा चीज़ नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते थे आप सच में कहिए तो इतना बड़ा चीज़ मेंस टूर्नामेंट में भी मुश्किल होता है। 269 इज़ ए बिग स्कोर, लेकिन जिस तरह से खेले और वन साइडेड, मैं तो कहूँगा कि जब चेज चल रहा था किसी भी मोमेंट पे हाफ वे थ्रू में ये नहीं लग रहा था कि हम हार सकते, सिर्फ ये था हम 46th ओवर में जीतेंगे या 48th में या 50th तक ले जाएंगे। सो ग्रेट विक्ट्री आई वुड से।
जी बिल्कुल, और गेम को थोड़ा करीब तक ले गए और ये सूझबूझ भी दर्शाती है कि भारतीय टीम को जल्दबाजी में नहीं थी कम से कम यहाँ से।
मैंने कहा ना, सब कॉन्फिडेंस की बात है। आपको जब समझ आ गया कि वहां पर बॉल इतनी स्विंग हो रही है, और इस बार आपने मेंस क्रिकेट देखा हो, विमेंस क्रिकेट देखा हो, जो ड्यूक की बॉलें हैं वो उतना कर्तव्य नहीं कर पा रही है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वो भी एक रीजन है। डिफॉर्म ज्यादा हो रही है, उनकी जो शेप है जल्दी बिगड़ रही है, तो ये सब कुछ फैक्टर्स भी हमारी फेवर में काम कर रहे हैं। मेंस में अनफॉर्चुनेटली बहुत क्लोज हम 2 मैच रहे हैं, लेकिन यहां पर विमेंस ने अपनी लय को चालू रखा हुआ है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भी जो 2 मैचेस है हमें जीतना चाहिए।
जी बिल्कुल, क्योंकि बॉल को लेकर के ड्यूक और कोकाबुरा की ये जो डिबेट है ये शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, इस बीच आईसीसी की वार्षिक बैठक आज सिंगापुर में शुरू हो गई। ये बैठक में 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर के टीमों के क्वालिफिकेशन से संबंधित तौर तरीकों पर चर्चा होगी। 2028 के लॉस एंजेलिस के ओलंपिक्स तो सबके सामने रहेंगे और एक बहुत बड़ा जो विषय इस चर्चा से पहले हम लोग के सामने था वो था 2 स्तरीय टेस्ट प्रणाली, जो 2 लेयर टेस्ट कल्चर की बात हो रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी समर्थन भी जताया है इस बैठक से पहले। श्रोताओं को हम समझाना चाहेंगे कि ये क्या है और इसका क्या असर टेस्ट क्रिकेट पर पड़ने जा रहा है।
देखिए, ये कैसा तिलिस्म है मैं तो कहूँगा, आप तो बहुत यंग है, मुझे अगर मैं कहूं कि पिछले 35-40 सालों में जब प्रोफेशन में रहकर ये समझ आया कि ये कुछ नहीं, एक आई वॉश है, ये जब से हम प्रोफेशन में आए उससे पहले से ये था कि ग्लोबलाइज करना है क्रिकेट को, नहीं हो पाया। ग्लोबलाइज तब तक हो रहा था जब तक आपकी वर्ल्ड लीग्स नहीं थी, जैसे IPL या बाकी की बिग बैश और जितना शुरू हो गया। आप ग्लोबलाइज कैसे करेंगे? आप करेंगे जब बड़े प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बॉलिंग मशीन्स में आपने बॉल भरी 160 के खेल रहे हो, कहोगे कि आयरलैंड की बड़ी अच्छी टीम होगी, कोई और जो छोटी कंट्रीज है नामीबिया इधर उधर की अच्छी होगी। नहीं, आप ग्लोबलाइज तब कर पाएंगे जब आपकी बड़ी टीमें एक दूसरे से रेगुलर खेलेंगे। अब हुआ क्या है, 2018 में इनको टेस्ट स्टेटस दिया है अफगानिस्तान और आयरलैंड को, लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब इनको दिया, आज कितने हो गए, करीब 6 साल हो गए खेलते हुए, 6 साल से ऊपर हो गया। आयरलैंड ने अभी तक कितने, 10 मैचेस खेले हैं, अफगानिस्तान ने 11 मैचेस खेले हैं, और उसमें अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनके अगेंस्ट नहीं खेला, इंडिया के अगेंस्ट एक खेला हुआ है, वो हार गए। और जो आयरलैंड है उन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड साथ है तो 2 खेल लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने भी नहीं खेले हैं। तो ये जो बड़ी, जब तक बड़ी टीमों को आप रेगुलर इनको एक्सपोजर नहीं दोगे, आप कहाँ से सीखोगे? क्रिकेट जो है, क्रिकेट ग्राउंड में सीखी जाती है, क्रिकेट को जो कहते हैं ना कि स्टेडियम्स के बाहर प्रैक्टिस मैचेस में नहीं कर सकते। अब ICC के सामने चैलेंज ये है कि पूरे साल में से जो खाली वक्त था, जहां पर खासकर आपकी इंडिया ए, इंडिया बी, ये जो सब टीम्स होती है ऐसे बाहर के नेशंस की भी, उसमें उनको खिला सकते थे इन टीमों के अगेंस्ट, लेकिन IPL, बिग बैश जैसी बड़ी लीग्स ने, पैसा वहां पर है, अब छोटे प्लेयर्स भी कहीं जाने को तैयार नहीं है, आपको NOC भी नहीं दिया जाते, तो आप कैसे ग्लोबलाइज करोगे? ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ तो है नहीं कि हमने आपको स्टेटस दे दिया। सो इट्स ए वेरी बिग चैलेंज, और ये शायद आने वाले दिनों में भी इसको सॉल्व कर पाना बहुत आसान नहीं है। और लास्ट बात मैं जरूर कहूंगा, अगर एक 2-tier सिस्टम बन गया तो क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, उनकी बर्बाद होगी जो छोटे नेशन है, क्योंकि जब वो अपने आप में खेल के एक कोई रेलीगेट करेगा, कोई ऊपर आएगा, तो उससे क्रिकेट का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखता, मतलब कि मुझे लगता है कि वो होना ही नहीं चाहिए।
जी, देखने वाली बात होगी कि सिंगापुर में इस AGM बैठक से क्या निकल कर सामने आता है। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने लास वेगास में फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंदा ने कल रात 4th राउंड में कार्लसन को 39 चालों में हरा दिया। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले कुछ देर में अब से शुरू होंगे। ये जीत पहले, वो एक नज़ारा हम याद कर रहे थे, एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई जहाँ पे टेबल में बिल्कुल हाथ मारते हुए कार्लसन उठे थे, और कल कुछ ऐसी स्थिति वापस हो गई उनके साथ।
देखिए, सबसे बड़ी चीज है उस डर को तोड़ना, उस जो कहते हैं ना एक चाइनीज वॉल को फांदना, तो ये ऐसे ही जो नॉर्वे की जो वॉल थी, जो कार्लसन है, इनको हराना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप देखें, इवन जब लास्ट में विश्वनाथन आनंद और ये सब खेल रहे थे, ही वॉज कहते हैं ना कि अनबीटेबल प्लेयर थे, लगता था कि एक अलग तरह के पैदा हुए हैं आफ्टर गैरी कास्परोव, एंड प्रोबेबली रैंकिंग में अगर आप देखें पॉइंट्स के हिसाब से ये उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। तो ऐसे में आपको जो कॉन्फिडेंस दिया वो गुकेश ने किया, उन्होंने 2 बार इनको हराकर बैक टू बैक जब अभी जब हराया, तो वो कहते हैं ना वो एक तोड़ दिया, तिलिस्म तोड़ दिया कि ये नहीं है तो बीटेबल है। अब उस कॉन्फिडेंस का फायदा देखिए, अब बाकी के प्लेयर्स आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं, बाकी अब सबको मालूम है ये बीटेबल है, ये भी अंडर प्रेशर आते हैं, ये भी टाइम प्रेशर में आते हैं, और अगर आप अच्छी चालें और टाइम को ध्यान में रखते हुए सब करोगे तो इनको हराया जा सकता है। फॉर्चुनेटली फॉर कार्लसन, गुकेश यहाँ नहीं खेल रहे, वो उन्होंने विड्रॉ किया क्योंकि तो पिछला टूर्नामेंट अच्छा नहीं किया था और आगे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स ए ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया।
जी बिल्कुल। वहीं अगर महिला शतरंज की बात की जाए तो जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहले गेम में भारत की दिव्या देशमुख ने चीन की जू जिनर को हरा दिया है, जबकि आर वैशाली, कोंदरू हम्पी और हरिका द्रोणावली प्री क्वार्टर फाइनल के पहले गेम में ड्रॉ रही और उनके दूसरे गेम अभी खेले जा रहे हैं। एशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 दिव्यांगता खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त 15 वर्ष की जडाला ने मिस्र के काहिरा में होने वाले विशेष ओलंपिक खेलों 2027 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक बड़ी उपलब्धि है भारत के पैरा खिलाड़ी, जो कीर्तिमान पिछले ओलंपिक से हम देख रहे हैं, जो सक्सेस रेट है वो तो नॉर्मल खिलाड़ियों को भी बीट करते हुए नजर आ रहा है।
बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक एनकरेजमेंट और जिस तरह का एक्सपोजर इनको दिया जा रहा है, खासकर दिव्यांग प्लेयर्स को, आई थिंक वो ट्रिमेंडस है इंडिया के पर्सपेक्टिव में।
टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में आज का दिन भारत के लिए बुरी खबर लेकर के आया, जहां प्रतियोगिता में आज भारत की चुनौती समाप्त हो गई। पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी, और पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय जो भारतीय कंटेंडर बचे हुए थे, ये आज अपने मुकाबले हार गए। और अगर बैडमिंटन की बात की जाए, पूरा भारतीय दल कल पीवी सिंधु का टूर्नामेंट से बाहर होना और फिर आज भारतीय चुनौती समाप्त हो जाना,
देखिए पिछले एक डेढ़ साल में ये बुरी खबरें ज्यादा आ रही है, खासकर पीवी सिंधु का जो फिटनेस में पूरा ना होना, उनका जो कमबैक भी रहा वो भी बहुत अच्छा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि विद द एज ऑब्वियसली आपकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है और इंजरी के बाद प्रॉब्लम है। मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन इज अ यंग मैन और उनसे बहुत सी उम्मीदें थी, खासकर जब उनके रिसेंट ओलंपिक्स में पदक जीतते जीतते रह गए तो उनसे बहुत उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रहे हैं। और रही बात डबल्स की, डबल्स हमारी सबसे बेस्ट बैट है एंड आई होप कि वो आने वाले वक्त में शायद ज्यादा बेटर कर पाएंगे।
जी बिल्कुल, क्योंकि सात्विक ने कहा कि मेरे लिए जो पहले ही चुनौती है वो ये है कि मैं अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप तक
Absolutely.
अपनी फिटनेस को मेंटेन रख पाऊं उसी लेवल पे जहां पे हम पहले कॉम्पिटिट किया करते थे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को खेलों को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनता खेल महासंघों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास से भारत इसे प्राप्त कर सकता है।
स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं, और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं।
सरकार लगातार प्रयासरत है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जहां पे खिलाड़ियों के लिए और खेल के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त स्थान हो।
देखिए सरकार जो कर रही है बहुत कमाल है, खैर अभी से नहीं कॉमनवेल्थ गेम से पहले से ही भारतीय जो स्पोर्ट्स में खासकर ओलंपिक स्पोर्ट में जो पैसा दिया है और फिर आने के बाद जब मोदी साहब आए और ये सब सरकार आई और ज़्यादा उसको बढ़ाते गए वो बहुत कमाल है। लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए या हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्राइवेट पार्टनरशिप की। जब तक कि प्राइवेट पार्टनरशिप को जो कहते हैं ना एक ऊपर से एक डंडा चलना बहुत ज़रूरी है कि आपको इतने परसेंट स्पोर्ट्स पे खर्चना है। जैसे पहले अगर आप हम जब बड़े हो रहे थे उस वक्त पे बैंक्स की टीम पब्लिक सेक्टर्स की टीम वो बहुत अच्छी होती थी, अब वो कहीं ना कहीं गिर गया स्तर, कोई नहीं लेता, स्टाइफन पे लेता है, स्टाइफन पे जब आप बच्चे को लोगे वो बड़े रिजल्ट्स नहीं देगा। तो शायद सरकार को अपना पैसा बढ़ाते रहे लेकिन ये डंडा चलाना भी बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, एक सीएसआर मॉडल खेलों के लिए भी, बिल्कुल जीएसआर की तरह की आपकी गेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइवेट सेक्टर अपनी निकाले। श्री मांडविया ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक का मसौदा न केवल सरकारी हितधारकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की राय लेकर के तैयार किया गया है और सरकार इसको आगामी मॉनसून सत्र में पेश करेगी।
ओलंपिक काउंसिल के साथ भी हमने कंसल्टेशन करा, सभी फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ भी बातचीत करी, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है। फीफा के ओर से कई क्वेरी आई थी तो मैंने स्पेशल ऑफिसर को भेजा फीफा के हेडक्वार्टर्स पर, जाके डिस्कस करो उसके साथ डिस्कशन हुआ और उनके बाद स्पोर्ट्स बिल तैयार हुआ है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, आने वाले सेशन में मुझे उसको पार्लियामेंट में लेके आना है।
लगातार इस मसौदे को लेकर, इस बिल को लेकर के चर्चाएं थी और थोड़ी सी जो असहमति के स्वर थे वो भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से आ रहे थे। हालांकि सरकार ने दावा किया कि उन सभी चीजों को सुलझा लिया गया है और एक बॉडी बनाने को लेकर के, एक नियामक बॉडी, कितना ये खेल जैसे डाइवर्स क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है।
बॉडीज आप 100 बनाते रहेंगे और सब अच्छा होगा लेकिन अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को पता है 2% 3% जॉब्स देनी है, इतना पैसा लगाना है, उसका सीएजी ऑडिट होना चाहिए, उस पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। बच्चों को पैसा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा और रोटी कपड़ा और मकान जो उनका श्योरिटी है आने वाले वक्त में तो वो अच्छा करेंगे। उनको अगर श्योरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो अपना हाफ हार्टेडली आपको देंगे और पूरा जोर नहीं लगा पाएंगे।
जी बिल्कुल, और यही कारण है कि जो हमारे सरकारी सेक्टर के जो संस्थाएं हैं वहां से निकल के डिफेंस से, रेलवे से बहुत शानदार खिलाड़ी देश के लिए आ रहे हैं। और श्रोताओं अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
शुक्रिया।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।